तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप आज का जो श्लोक है 27 और 28 अध्याय है 5 और अध्याय का नाम है कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। तो मैं पढ़ूंगा श्लोक जो है एक साथ हैं 27 और 28, आप लोग दोहराएंगे। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यन् चक्षुरश्चैष्वान्तरे भ्रुवोः प्राणा अपानो समो कृत्वा नासा अभ्यंतरचरणारिणो यतेन्द्रिय मनोर बुद्धिर्मुनि मुनिर्मोक्ष परायणः विगते इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सह। स्पर्शान इंद्रिय विषयों तथा ध्वनि को, सब लोग बोलिए, इतने लोग हैं ठीक है, कृत्वा करके, बहिही बाहरी, वाह्यन अनावश्यक, चक्षुः आँखें, च भी, एव निश्चय ही, अंतरे मध्य में, ध्रुवोः भौहों के, प्राण अपानो ऊर्ध तथा अधोगामी वायु, समो रुद्ध कृत्वा करके, नास अभ्यंतर नथुनों के भीतर, चारिणो चलने वाले, यत संयमित इंद्रियः इंद्रियां, मनः मन, बुद्धि ही बुद्धि, मुनि ही योगी, मोक्ष मोक्ष के लिए, परायणः तत्पर, विगत परित्याग करके, इच्छा इच्छाएं, भय डर, क्रोधः क्रोध, यह जो, सदा सदैव, मुक्तः मुक्त, एव निश्चय ही, सह वह। अनुवाद और तात्पर्य परम महाभागवत जगत गुरु शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद महाराज की जय। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोक करके, और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। आप लोग पीछे से दोहराएंगे। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर, इस तरह मन इंद्रियां तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। समझ में आ गया? आ गया होगा शायद, है नहीं? ठीक है, हरे कृष्णा। हरे बोल। तो भगवान जो हैं कितने सुंदर ढंग से यहाँ पर समझा रहे हैं अर्जुन को। हम लोग प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर और विस्तार से इसको समझेंगे। तात्पर्य है, कृष्ण भावना अमृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है। कृष्ण भावना भावित का कोई आप में से अर्थ बताएगा क्या होता है? कौन बताएगा आप में से? हाथ खड़ा करेंगे जी। बहुत अच्छा। तो कृष्ण, इसका सरल शब्द क्या है पता है? कृष्ण, कृष्ण मतलब भगवान, कृष्ण भावना मतलब कॉन्शियसनेस, सब कृष्ण की भावना। जैसे मोबाइल कॉन्शियसनेस, हम लोग देखिए सत्संग के बीच में भी मोबाइल बीच में, कितना चेतित है उसको, जेब में रखा कि नहीं रखा, रात को सोते वक्त भी तकिया के पास में रख रहे, बिड बैग के भीतर अंदर रख रहे हैं, कितना कॉन्शियसनेस हो गई। देखिए मोबाइल को, माला माला एक साइड हो गई मोबाइल के साथ में, मोबाइल का कवर देखिए हाई क्वालिटी का। तो मोबाइल कॉन्शियसनेस, क्रिकेट कॉन्शियसनेस, ठीक है कि नहीं? बनिया जो है तोलते रहता है, पूछते रहता है, चौका लगा जैसे कि इस बड़ी शांति मिल गई हो, अगले फिर अगले ही पल विकेट भी उड़ने वाला है। समझ रहे नहीं? तो क्रिकेट कॉन्शियसनेस, मोबाइल कॉन्शियसनेस, जैसे एक माँ अपने बच्चा कॉन्शियसनेस, स्कूल में क्या कर रहा होगा, है घर में, वो लड़ तो नहीं रहा होगा, गिर तो नहीं रहा होगा, कैसे आएगा रास्ते में, ठीक से लाएगा, मतलब पूर्ण रूप से बच्चे को जो है याद कर रही है। इसको कहते हैं भावना। ये होता है ऐसे याद करना। इस प्रकार से कृष्ण हमें, कृष्ण भावना भावित, कृष्ण की भावना में भावित कर्म, जब ऐसे हो जाएंगे तो हमारे सारे कर्म किसके लिए हो जाएंगे? उठने से लेकर सोने तक हम सो रहे हैं प्रभु के लिए, क्योंकि यह शरीर भगवान का है, गुरु गौरांग को बेच दिया। एक दफे एक भक्त जो है बहुत दिन से बीमार था, तो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उसको बोलते हैं जाओ तुम डॉक्टर को दिखा के आ जाओ। वो मना करता है, नहीं मैं बस ठीक हो जाऊंगा। वो बोलते हैं ये शरीर मेरा है, तुमने दीक्षा के समय इसको बेच दिया मेरे को, अब ये शरीर तुम्हारा नहीं है, तो मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, जाओ डॉक्टर को दिखाओ और एक्टिव हो जाओ और कृष्ण भावना में शुरू हो जाओ। ये तो बीमारी तो इस संसार में आके है ना, ये बीमार हैं वो बीमार हैं, सबसे बड़े बीमार हम पता है किस लिए कैसे हैं बोलिए? मन के बीमार हैं हम लोग। सबसे बड़ा हमारा शत्रु कौन है? मन है, हम उससे बीमार हैं। तो जब जो व्यक्ति मन से ही बीमार हो गया वो तो सारी चीजों से बीमार हो ही जाएगा, फिर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वो सबसे बीमार। तो हमारा मन जो है सबसे बड़ा बदमाश है और मन ही हमारा शत्रु है। अभी हमारा मन मित्र कभी कभी मित्र बन जाता है, जैसे आज मित्र बन गया, यहां आ गए सब, है नहीं? तो कितने लोग जो टीवी के आगे बैठे हैं तो उनका शत्रु बना हुआ है, लेकिन उनको लग रहा है मैं कितना अच्छा प्रोग्राम देख रहा हूं, देखो, है नहीं? भले ही उसमें मेहनत ना करनी पड़े, केवल बैठे बैठे चेयर में देखना पड़े, लेकिन यहां भी आप लोगों के लिए कथा कीर्तन के लिए चेयरें लगा रखी, इतना सुंदर ऑडिटोरियम। तो अभी जो लोग माला कर रहे हो, माला ना करें, एक समय में एक काम, अगर माला करेंगे तो ये अपराध है, भगवान बोलेंगे इतना सस्ता, मतलब एक साथ दो दो काम कर लेते हो आप, कितने मास्टर हो भैया। है नहीं? तो ये खाना पूर्ति होगी, खाना पूर्ति, माला का मतलब ये हरे कृष्ण कृष्ण सुन भी रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कहाँ शब्द कहाँ सुन रहे हैं, केवल खाना पूर्ति बस, तो ये माला नहीं है और अपराध भी है। एक समय में एक काम, ध्यान पूर्वक जप न करना भी, तो कहाँ ध्यान पूर्वक जप हो रहा है? तो एक समय में एक कार्य। तो कृष्ण भावना अमृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है। जब इस प्रकार की भावना से आप रत हो जाओगे तो उसके लिए बता रखा है ये कृष्ण भावना भावित, ये तो दिस इज गोल ऑफ लाइफ, यही हमारी पूर्ण कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम लोग क्या हो जाए, कृष्ण चेतना में कर्म करें हम, जो कृष्ण की इच्छा है वही हमारी इच्छा है। समझ रहे हैं? अभी अभी क्या है, कृष्ण की इच्छा को कौन पूछता है, हमारी इच्छा क्या है, अभी हम कृष्ण को माला कर रहे हैं तो इसलिए कृष्ण ये चीज मिल जानी चाहिए, नहीं तो माला छोड़ दूंगा। तो भगवान बोलते मेरा क्या बिगड़ेगा, छोड़ दे, मैं तो मुक्त ही हूं, मैं तो भगवान हूं, मैं तो आनंद में हूं, मेरे से दूर होगा तो बिगड़ेगा किसका बताइए। तो सनक और सनकी वाले भावना नहीं होनी चाहिए। भौतिक जीवन में जितने भी लोग हैं ना सब सनकी हैं, सनकी सनकी जानते हो ना, दो मिनट में आए रंगत में बड़ा भक्ति हो, हरि बोल हरि बोल, दो मिनट में फिर भाई गंगा गए तो गंगादास, यमुना गए तो यमुनादास, माया गए तो मायादास, समझ रहे नहीं। अभी हम कृष्ण चेतना में नहीं हैं, इसीलिए ये भावना हमारी ज्यादा होनी चाहिए। ये तब हो पाएगी जब इस प्रकार से हम बैठेंगे और ध्यान पूर्वक सुनेंगे, बीच में मोबाइल नहीं खड़खड़ाएंगे, ना ही माला खड़खड़ाएंगे, केवल सुनना भी एक बहुत बड़ी कला है, समझ रहे नहीं। जब आप ध्यान पूर्वक सुनते हो तो आपको लगेगा कि आपने कुछ सुना, आप कुछ लेके गए हो घर, और हमारा जीवन कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अभी नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं, देखिए तो क्या बता रखा है। जैसे हम आपको यम नियम प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं, इसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि, समाधि ये अष्टांग योग के ये आठ क्या हैं, अंग हैं, समझ रहे हैं। ये अष्टांग योग की बात बताई जा रही है, अर्जुन ने पूछा जब, तो ये ऐसा ही है, अपने पैर की एड़ी को, पैर का जो अंगुष्ठ है उससे गुदा द्वार को बंद करना, अपान वायु, नीचे से जो वायु निकलती है उसको बंद करके वहां से ऊपर को शिशुमार चक्र, नीचे से जो है, अब इतना कहां, यहां तो पालती मार करके बैठने में एक घंटे में हालत खराब हो जाती है, फिर सत्संग याद नहीं आता, घुटने का दर्द है बार बार, वो स्वामी जी थोड़ा खत्म कर देते तो अच्छा होता, बस हो गया बहुत हो गया, समझ रहे नहीं, घुटने का दर्द याद आ रहा होता है। तो क्या हम क्या बोलते हैं, गुदा द्वार को पैर के अंगूठे से बंद करेंगे, फिर प्राण वायु को धीरे धीरे यहां से ले जाकर यहां तक, फिर भौहों में केंद्रित करेंगे, फिर जो है यहां से प्राणवायु निकलती, मतलब यानी कि प्राणवायु का मतलब आत्मा, आत्मा जो है ब्रह्मरंध्र, यहां से फिर निकलती है। तो ये प्रोसेस भगवान ने बोला बहुत कठिन है कलयुग के जीवों के लिए, ये तो खाईते सुईते यथा तथा नाम लय, ये बैठ करके माला कर लें, खाते पीते सोते उठते बैठते, इसीलिए भगवान ने बोल दिया नियमते स्मरणे ने काल। लोग पूछते हैं कभी कभी, प्रभु जी कोई नियम है माला में, बोले भैया नियम नहीं रखा है भगवान ने, बोले जैसे तैसे, भाव कुभाव आलस दस, मतलब आलस से जपो, भावना से जपो, कुभाव ऐसे ही ठीक, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कोई मन बिल्कुल नहीं है, ठीक है कि नहीं। अब विषयी व्यक्ति का मन कहां होगा बताओ, उसका मन तो काम में, क्रोध में, लोभ में, समझ रहे नहीं। आपको पता है मरीचि ऋषि के 6 पुत्र थे, किनके, उन्होंने ब्रह्मा जी का अपराध किया, क्या अपराध किया, वैष्णव अपराध, 6 प्रकार के वैष्णव अपराध में से, वैष्णव को देख करके मतलब मजाक उड़ाना, उनका हंसना, उनको हिंट करना, इंगित, क्या हिंट किया, क्योंकि वो अपनी पुत्री के पीछे भाग गए थे ब्रह्मा जी, तो उनने इतने बड़े व्यक्ति का जो है अपमान किया था, तो उनको श्राप मिला कि तुम जाके असुर बनोगे नीचे, और उसके बाद भी फिर तुम देवकी के गर्भ में प्रकट होकर कंस के द्वारा मारे जाओगे। तो 6 पुत्र जो थे, जब वसुदेव ने वचन दिया था, क्या वचन दिया था, कि मैं हर पुत्र को कंस तुम्हारे पास लाऊंगा, और वसुदेव वचनों के लिए विख्यात थे, विख्यात मतलब प्राण जाए पर वचन न जाए, भगवत भक्त का भी ऐसा जीवन होना चाहिए, सबको लेके गए, लेकिन कृष्ण को छोड़कर बाकी सबको लेके गए हो। क्यों कृष्ण को नहीं लेके गए, क्योंकि कृष्ण ने चतुर्भुज रूप में जब प्रकट हुए थे वसुदेव जी और देवकी के आगे जेल में, कृष्ण ने कहा मुझे गोकुल ले चलो, तो वसुदेव जी कंस का ऑर्डर मानेंगे कि भगवान का ऑर्डर मानेंगे, बोलो, तो उन वचन तोड़ दिया, बोले कोई बात नहीं, प्राण जाए वचन भी जाए, भगवान के लिए, भगवान के लिए हम कुछ भी दाव पर लगाने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो इस 6 पुत्र में क्यों बता रहा हूं इसको, काम क्रोध लोभ, इसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है इसका ये भी बताते हैं कि ये जो मारे गए पहले, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष झूठा अहंकार, ये 6 पुत्र ऐसे मारे गए, तभी तो कृष्ण प्रकट होएंगे जब ये सब मरेंगे, समझ रहे नहीं, तभी तो जन्माष्टमी आएगी। तो तो हृदय में जब ये षड रिपु जो है क्या होएगा, क्योंकि जब ये मारे गए तब भगवान बलराम जी के रूप में और फिर कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। इसी प्रकार हमारे हृदय में जब ये मारे जाएंगे, ये असुर हैं, सबसे बड़े असुर क्या, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष झूठा अहंकार, तभी भगवान फिर हृदय में प्रकट होंगे और उस प्राकट्य को ही जन्माष्टमी कहते हैं। समझ रहे नहीं, भगवान हृदय में प्रकट हो गए, लाइव हो गए, अभी परमात्मा रूप में है अंगूठे के आकार में, लेकिन भक्त के हृदय में तुम्हारो ही हृदय सदा गोविंदो विश्राम गोविंदो कहे न मम वैष्णव पराण। हे वैष्णव ठाकुर, आपके हृदय में भगवान परमात्मा रूप में नहीं है, साक्षात हैं, उनके चरण कमल भी हैं, पूरे के पूरे हैं। तो भक्त के हृदय में भगवान पूरे के पूरे विराजित होते हैं, क्योंकि इतनी भक्ति कर चुका होता है, भगवान को आना पड़ता है। भगवान उस भक्त के बिना, भगवान बोलते हैं मैं उसको उसके बिना रह ही नहीं पाता हूं, मैं उसके सिवा किसी को नहीं जानता हूं, वो मेरे सिवा और किसी को नहीं जानता है। देखिए ऐसा गाढ़ प्रेम, ऐसी तो ये स्थिति कब हमारी आएगी, जिस पल ये स्थिति हमारी आ गई उस पल सर्वत्र है इष्ट देव स्फूर्ति, स्थावर देखे जंगम देखे तार देखे ना मूर्ति। फिर मंदिर में ही भगवान नहीं है, भगवान कहां है बताइए, हरि व्यापत सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई में जाना। क्योंकि हृदय में प्रेम आ गया और प्रभु हृदय में आ गए और ऐसी दृष्टि आपकी डेवलप हो गई, आप सर्वत्र सबके भीतर प्रभु को देख रहे हो, सब कुछ प्रभु का देख रहे हो। समझ रहे नहीं, सर्व खल विदम ब्रह्म, आप स्थावर देखते हो, जंगम देखते हो, सब जगह आपको अपने इष्ट की स्फूर्ति होती है, वो रहे कृष्ण। समझ रहे नहीं, अभी क्या दिखता है, मोटा पतला अमीर गरीब अच्छा बुरा पता नहीं क्या क्या, और उसी प्रपंच में हम लोग अपने दिमाग को दौड़ाए हुए, कृष्ण के लिए नहीं, उतना कृष्ण को नहीं दौड़ाते हैं कि कृष्ण को पकड़े थोड़ा, है नहीं, नहीं नहीं, मन कहां जा रहा है, निंदा चुगली में, वहां निंदा वहां चुगली वहां ये, उसने ऐसा कहा उसने ये किया उसने वो किया, पूरा हमारा आधा से ज्यादा समय तो इसी में बीतता है। इसीलिए कृष्ण बोलते हैं भैया हरे कृष्ण तो बोल रहा है लेकिन सोच क्या रहा है, बेटी की शादी कब होगी, ठीक है कि नहीं, पैसे कैसे, बहुत दिन हो गए, बस व्यापार बिजनेस ठीक से हुआ नहीं, हरे कृष्ण, दुखी है दुखी आत्मा। भगवान बोलते हैं भाई तू वही सोचते रहो फिर मैं चला जाता हूं। सही में भगवान बोलते ही आ जाते हैं, कृष्ण को आपने टेलीफोन लगाया उनका मोबाइल नंबर, कृष्ण इमीजिएट वहां पर प्रकट हो गए। प्रभुपाद तो बोलते हैं राधा कृष्ण जिह्वा में नृत्य करते हैं, लेकिन उसके बाद हम ध्यान हमारा और जगे, वो कैसे जप कर, वो देखो ठीक से जप नहीं कर रहा है, वो पैर हिला रहा है, वो देखो हम वही देखते रहते हैं, बस हो गए वो ऐसा कर रहा है वो उसको दे रहे, अपने को देखो आप क्या कर रहे हो, क्या आप अपने जप को सुन रहे हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक भक्त हैं हमारे अमोघ लीला प्रभु जो वो भी करते हैं, वो जब जब करते हैं तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मतलब वो तुलसी को देख के बोलते हैं हरे नाम केवलम, केवल यही है बस, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये भक्तों की भावनाएं हैं, समझ रहे हैं, तो हमारा ध्यान जो है 24 घंटे एक दूसरे में इधर उधर उधर इधर उधर, क्योंकि बिविल्डर है मन, चंचल है ना, वही दिखाई देता है। तो हरि व्यापत सर्वत्र कहां दिखाई देते हैं, क्योंकि प्रोसेस में ठीक से ढले नहीं है, ये मेन कारण है। तो ये जो यम है, यम का मतलब क्या है, कौन बताएगा, यम का मतलब होता है नियम, नियम कानून, जैसे हमारे यहां नियम क्या है बोलिए, चार नियम है ना, किसी प्रकार का नशा नहीं करना, सब लोग बोलिए, किसी प्रकार का, दूसरा किसी प्रकार का मांसाहार नहीं करना, तीसरा किसी प्रकार का अवैध संबंध नहीं करना, चौथा किसी प्रकार का जुआ सट्टा बाजारी शेयर लॉटरी शेयर भी नहीं, ठीक है कि नहीं, तो ये सब नहीं करना, ये चार चीजें, ये नियम है, यम का मतलब होता है नियम, और यम का मतलब होता है जो नहीं करना है, मतलब ये है। यम का मतलब क्या हुआ? जो नहीं करना है, जैसे ये जो नशा नहीं करना है, यानी कि नशा करना है, मांसाहार करना है, ऐसा नहीं, मांसाहार नहीं करना है। तो यम मतलब जो नहीं करना है, और नियम मतलब जो नियम करना है। क्या करना है बोलिए? सवेरे उठ करके स्नान करना है, भगवान को प्रणाम करना है, तुलसी में जल डालना है, प्रदक्षिणा करनी है, केवल इतना। ये भक्ति के नियम है। और जप करना है, भगवान के दर्शन करके, वैष्णवों को प्रणाम करके, आशीर्वाद लेकर के फिर जप करना है। ये नियम है। और जप कैसा करना है कि 16 माला सवेरे ही पूरी हो जाएं, वो व्यक्ति फर्स्ट क्लास भक्ति में आगे बढ़ रहा है। जिसकी सवेरे पूरी, जो अहमियत देता है 16 माला सवेरे पूरी हो जाएं उसको, जो इसको छोड़ करके अन्य चीजों में अहमियत देता है सवेरे सवेरे, बुरा नहीं मानना, वो अभी एडवांस नहीं है। वो मतलब भगवान से भी ज्यादा दूसरी चीजें जरूरी हैं उसके लिए। मतलब भगवान से ज्यादा दूसरी चीजें जरूरी हैं कि भगवान जरूरी हैं? हरि बोल हैं, तो कहां भगवान जरूरी हैं? हम तो दो माला करी फिर दूसरी चीज करते हैं। तब तक उधर से सेव दिखाई दिया तो हरि बोल सेव, इधर दो इधर, जोर से आवाज हुआ सेव की, सेव, अरे मेरे को नहीं दिया। दो तीन माला मैं एक दफे देखा कि हम लोग वृंदावन गए थे, सवेरे सवेरे जब वापस आ रहे थे वहां से, कहीं राधा कुंड की ओर जा रहे थे, अभी 5 बजे हैं, माला न करके आधे लोग लेज चिप्स खा रहे हैं। धन्य है भाई, 5 बजे ही डोंगा भरने लग गए, फाचा फूची निकले हुए इतने लंबे लंबे इधर उधर सब, फिर भी कहा हरे कृष्णा नहीं जपना है, इतना भूख लग रहा है, हाल क्या नियम करेंगे बताओ। इसलिए कलयुग में हालत पतली है बिल्कुल, सवेरे उठते ही उसको भोजन, क्योंकि भोजन में प्राण है ना, भजन में प्राण नहीं है, भोजन में प्राण, समझ रहे नहीं? प्रसाद के लिए मारा मारी कर देंगे, मारा मारी बिल्कुल, बटे ना बटे किसी को भी बस हो गया, हरी बोल हटो मैं पहले था, सारा सत्संग एक साइड गया, हो गया हरी बोल हटो इधर मैं पहले था, तो सारा वहीं पर पता चल जाता है कितना सत्संग सुना है करके, समझ रहे नहीं? तो यहां पर क्या बता रखा है, इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है, समझ रहे हैं? तो जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास करके भजन करता है, पता चला सबसे लास्ट में जा रहा है लेकिन एक प्लेट वहां पर बची हुई है, सो सबसे पहले जा रहा है उसको बोल दिया जाता है बैठो उधर, अभी अभी नहीं मिलेगा, समझ रहे? वो सोचता है मैं ज्यादा चालाक हूं, सबसे पहले गया, बोले अभी नहीं मिलेगा, और ये सबसे बाद में आराम से भजन करके शांति में उसके लिए प्लेट लगी हुई है, प्रभु जी आप आए हैं लीजिए, क्योंकि भगवान उस व्यक्ति के हृदय में बैठे हैं प्रसाद देने वाले के, वो देख रहे हैं क्या करा है। भगवान बोलते हैं अनन्यस्य चिंतयन्तो माम ये जना परियोपासते, हम अभी भगवान को महत्व तो नहीं दे रहे हैं, हम सांसारिक चीजों को महत्व तो दे रहे हैं, इसलिए भगवान बोलते हैं ठीक है बेटा फिर पापड़ बेल, ज्यादा सियाना है ना, भगवान पूरे हाथ पीछे खींच लेते हैं, ज्यादा सियाने हो M.Com, M.Tech, ज्यादा PhD, वैज्ञानिक, बोले हाँ करते रहो बस, कोई आशीर्वाद नहीं, क्योंकि वो आशीर्वाद लेना ही नहीं चाहता है, वो सोचता है आई एम साइंटिस्ट, हु इज गॉड, भगवान कौन होते हैं, मैं ही सब कुछ हूं, सब मुझे पता है, सारे श्लोक मैंने सब याद कर लिए, तो खाक भी याद नहीं किया। भक्ति का मतलब क्या है? संपूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर हो जाना, गुरु गौरांग की आज्ञा पर निर्भर हो जाना। गुरु गौरांग की आज्ञा क्या है? एक व्यक्ति एक गुरुदेव से दीक्षा लेने के लिए गया, गुरुदेव मुझे दीक्षा दे दीजिए, बोले गुरुदेव ने बोला पहले सेवा करो, दीक्षा मिलेगी 1-1.5 साल बाद, क्या करूं? बोले मेरे लिए फूल चुन के लाओ, डेली सेवा, मेरे लिए मतलब भगवान की सेवा करते थे, भगवान के लिए फूल जो है नदी के उस पार थे, ये डेली नदी के उस पार नाव में जाता था, आता था, फूल लाता था। एक दिन क्या हुआ, पानी, जैसे अभी पानी बढ़ा हुआ है ना नदियों का तूफान में, तो नावें भी चलना बंद हो जाती हैं, क्योंकि इतना वेग होता है कि नाव कब पलट जाए पता ही नहीं, क्या करें अब, कैसे जाए नाव उस साइड, कैसे जाए? ये गुरु जी के पास वापस आया, बोले गुरुदेव कैसे फूल चुन के लाऊं मैं, पानी का वेग बहुत है, नाव भी नहीं जा रही। बोले बेटा ऐसा करो, मैं तुमको एक मंत्र देता हूँ। इस कागज में, ये कागज की जो पुड़िया है, इसमें वो सारा मंत्र है जिससे तुम नदी के उस पार पानी में चल के जा सकते हो। अच्छा, बोले हाँ, बोले विश्वास है, बोले बिल्कुल गुरुदेव विश्वास है, बोले एक शर्त है, खोलना नहीं है इसको, बस तुमने दाहिने हाथ में पकड़ो और नदी को उस पार कर जाओ। जाओ, ये सच में नदी पार कर गया, वापस भी आ गया। ऐसे दो तीन दिन लगातार गया, ये चौथे दिन इसको क्या हुआ, इसने सोचा आखिर चीज क्या है, एक छोटा सा कागज का टुकड़ा जो है, जरा देखूं तो सही। गुरुजी ने मना किया था लेकिन फिर भी ये देखने लगा। बीच नदी में देखने लगता है, उसमें खाली रा और म, राम लिखा हुआ था। बोलता है बस ये तो पहले से मुझे पता था, इससे मैं तैर रहा हूं। अविश्वास हुआ और तुरंत डूब गया, बहने लगा। वो तो वहां पर नाविक लोग थे, उनको तैरना आता था, उनने बचा करके गुरुजी के आश्रम में पहुंचा दिया इसको। तब गुरुजी ने बोला मैंने तुमसे मना किया था ना। बोले गुरुदेव आज तक तो तैर रहा था। बोले आज तक इसलिए तैर रहे थे, तुमको विश्वास था, लेकिन जो ही तुमने खोला, तुमने सोचा ये तो राम, ये तो मुझे पहले से पता है राम, लेकिन राम नाम की महिमा तुमको पता नहीं है कि ये राम कोई इतना साधारण नहीं है। जिस सागर को बिना सेतु के फांद सके नहीं राम, समझ रहे हैं? कूद गए हनुमान उसी पर लेके श्री राम का, और वो दिल वाले डूब जाएंगे जिन्होंने लिया कभी नहीं नाम, वो पत्थर भी तर जाएंगे जिन पे लिखा श्री। तरे हैं पत्थर, पुल बना है, हनुमान जी बड़े बड़े पहाड़ पत्थर ला रहे थे, और नल और नील उसको क्या करते थे, बड़े बड़े पहाड़ों को तराश करके एक में रा लिखते थे, एक में मौ लिखते थे, राम नाम का फेविकोल लगा करके डाल दिया और वो चिपक जाते थे पत्थर और पुल बन जाता था। प्रभु ने महिमा बतलाने के लिए एक पत्थर उठाया और डाला, वो सीधे डूब गया। हनुमान तुम पत्थर डाल रहे हो तो तैर रहा है, मैंने पत्थर डाला तो डूब गया, ऐसा क्यों? हनुमान बोलते हैं प्रभु आप तो सब जानते हैं, त्रिकालज्ञ हैं। बोले नहीं नहीं तुम बताओ, तुम पत्थर डाल रहे हो तैर रहा है, मैं पत्थर डाल रहा हूं डूब गया। बोले प्रभु जिसको आप ही छोड़ दें वो तो डूबेगा ही ना। जिसको मतलब जिसके जीवन में आप ही नहीं हो तो डूबेगा ही, लेकिन वो पत्थर भी तर जाएंगे जिन पे लिखा। पत्थर मतलब डेड वस्तु, निर्जीव वस्तु, राम लिख दिया उसमें जान आ गई, वो तैरने लग गया पत्थर। आज भी आप अगर आप रामेश्वरम जाओगे वहां पत्थर तैरते हुए दिखाई देते हैं, भगवान के नाम की वो महिमा है। तो हम कितने ही कामी क्रोधी लोभी लंपट क्यों ना हो, लेकिन अगर राम का नाम लेंगे हम, अगर हम ये हरे कृष्ण महामंत्र अपने जीवन में अपनाते हैं, तो महामंत्र हमको क्या कर देगा, शुद्ध कर देगा, फिल्टर कर देगा, है नहीं? तो बोलिए प्रेम से हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो इसीलिए ये है धर्म। कोई बोले मैं धार्मिक हूं, बोले क्या कर रहे हो, बोले जी स्वामी जी मैं जो है हरिद्वार से जल इकट्ठा करके ला रहा हूं शिव जी के माथे पर डालने के लिए। अच्छी बात है, लेकिन आपको ये पता नहीं कि शिव जी ने एक जटा खोली तो इतना पानी वैसे ही आ गया। इतनी एक जटा खोली थी, अगर सारी जटाओं को खोल देते तो पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती। तो कलयुग केवल जल चढ़ाना आधारा नहीं है, कलयुग केवल नाम आधारा। शिव जी भी एक हाथ में क्या करते रहते हैं, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंच मुखे महादेवा, अरे बोले क्या राम राम हरे हरे, वो भी महामंत्र का जप कर रहे हैं। और यहां से हरिद्वार जाते जाते, पैदल जाते जाते, एक तो ट्रैफिक जाम अलग होता है, और दूसरा क्या होता है पता है, क्या बोलते हैं, बीसों बंडल बीड़ी के फूंक जाते हैं वो लोग। अब तो शिव जी के लिए जल ला रहे हैं, शुद्ध तो हो जाओ भाई, है कि नहीं? तो शिव जी वैसे ही एक जटा खोल देते हैं तो इतना जल आ जाता है, सारी गंगा जी उन जटाओं में लपेट रखे हैं। तो उनको आपके जल की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि वो चाहते हैं कि आप सभी भगवान को शरणागत हो जाओ, उनका नाम लो, उनकी आज्ञाओं का पालन करो, ये असली जल चढ़ाना होगा। नहीं तो कैसा होगा पता है, ये तो ऐसा ही हुआ, पापा मैं आपको बहुत मानता हूं, शिव जी मैं आपको बहुत मानता हूं, ठीक है कि नहीं?
बहुत मानता हूं। बोले कितना मानते हो? बोले बहुत, बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, तभी तो हरिद्वार जा रहा हूं इतनी दूर। बोले बेटा एक गिलास पानी लाके पिला दोगे, बहुत मानते हो तो? बोले खुद ले आओ। ये मानना हुआ? बोलिए तो आज्ञा का पालन करना, भगवान क्या कह रहे हैं, मनमानी भक्ति नहीं करनी है। जो मेरे मन आए सोई में करना जी, मेरे मन में ऐसा आ रहा है, मेरे तेरे मन की कौन पूछ रहा है, तेरा तो मन बदमाश है, तभी तो संसार में फंसा हुआ है। भगवान क्या कह रहे हैं, जो मुक्त पुरुष हैं आचार्य लोग, स्वयंभू शंभू नारद कुमारो कपिलो मनु, ये 12 महाजन क्या कह रहे हैं। महाजने ये न गता सपंथा, वही पंथ है, महाजन जो कहते हैं वही, उसी पंथ पर हमने चलना है। वो क्या कहते हैं, वो है भजन प्रणाली। तो यहां पर जो यम, यम का मतलब जो नहीं करना है, नियम का मतलब जो नियम है, ठीक है, और आसन, फिर बढ़िया से आसन लगाते हैं। लेकिन कलयुग में आसन क्या, आधा एक घंटा आप बताइए, 2 घंटे अगर यहीं पर चेयर में बैठे बैठे हो जाएं तो उसमें आदमी जो है हिलने लग जाता है। पालती मारने में 1 घंटे में पालती, ऐसी स्थिति हो गई, पालती 1 घंटे नहीं मारी जा रही है कलयुग में, यह स्थिति हो गई है। तो क्या आसन लगाएगा वो, कुश का आसन होना चाहिए, स्वच्छ स्थान होना चाहिए, और इस प्रकार तब वो अपनी पालती मार करके अपने गुदा द्वार को बंद करते हुए प्राणवायु को ऊपर लेके जाएगा, ऊपर को। तो कितना कठिन मार्ग है। ऐसे ही प्राणायाम, प्राणायाम का मतलब होता है प्राण विशेष, आयाम मतलब विस्तार, प्राणायाम कहलाता है, नख से सिख तक जो ले जाने को। और प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारी इंद्रियों के कार्य बंद कर देने चाहिए, यही प्रत्याहार कहलाता है। इंद्रियां क्या, कौन है, 5 कर्म करने वाली, 5 ज्ञान लेने वाली इंद्रियां। कर्म करने वाली कौन कौन है जरा बताएंगे कोई, नहीं तो बोलिए हमारे पीछे। हाथ, पांव, मुख और मलमूत्र त्यागने के स्थान, उपस्थ गुदा, ये 5 कर्म करने वाली इंद्रियां। 5 ज्ञानेन्द्रियां, आंख, नाक, कान, आंख नाक कान 3, और जिह्वा 4, और त्वचा स्किन, ठीक है कि नहीं। शब्द और इनके विषय भी हैं। आंख का विषय क्या है, हैं रूप, रूप आंख देखना चाहता है इस, कोई स्थान दृश्य व्यक्ति, उसमें जो है आंख उसको देखती है। शब्द, कान शब्द सुनना चाहता है। देखिए जब तक इंद्रियां शुद्ध नहीं होंगी तो हमें, हमें क्या करना चाहिए, भक्ति योग में ये सारी इंद्रियां एक साथ भगवान में लग जाती हैं। आंखों से हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं, संसार में आंखों को तृप्त करने के लिए सुंदर रूप होना चाहिए, नहीं तो तृप्त, और होगा भी तो 2-3 दिन, फिर दूसरा व्यक्ति चाहिए, और बहुत दिन देख लिया इसको, अब कोई नया होना चाहिए, नया स्थान, स्विट्जरलैंड, गोवा, ऊंची मन, लेकिन देखने के बाद भी फिर भी तृप्ति नहीं हुई भैया। कानों के लिए सुंदर गाने चाहिए संसार में, शब्द, और स्किन के लिए स्पर्श चाहिए, कुछ आलिंगन, समझ रहे नहीं, और मुंह के लिए, उसके लिए क्या चाहिए, जिह्वा के लिए रस, स्वाद। कितने स्वाद लिए हम लोग बताओ, पिज्जा बर्गर से लेके बाप रे बाप, क्या क्या ना मालूम, और गृहस्थ लोग तो मास्टर हैं उसमें, स्वाद लेने में, है कि नहीं मास्टर, कहां कहां से बोलते हैं प्रभु जी, वहां का, वहां का जो है ना मकई बड़ी फेमस है, क्योंकि खाना है जिह्वा। तो ये सारी इंद्रियां जब क्या हो जाएंगी, बोलिए, क्योंकि ये सारी इंद्रियां इस संसार में अलग अलग तृप्त करी जाती हैं, लेकिन भगवान को जब हम देखते हैं सारी इंद्रियां एक साथ ही तृप्त हो जाती हैं, अलग अलग तृप्त करने की जरूरत, ये है आनंद। कान भी तृप्त हो जाते हैं, आंख भी तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान ऋषिकेश हैं, ऋषिकेश सारी इंद्रियों के स्वामी भगवान ही हैं, और जब हमारी इंद्रियां उनको देखने लग जाती हैं, अंग अंग रोम रोम हर्ष से क्या हो जाता है, नाचने लगता है, कबहुआ कांदे कबहुआ नाचे, कभी नाचता है कभी रोता है कभी बिलखता है, उद्दंड होकर के हरि बोल गाता है, समझ रहे नहीं। तो भक्त की स्थिति यह है, भक्त को इतना कठोर यम नियम, ये आसन प्राणाहार प्रत्याहार इंद्रियों को बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कितना बंद करोगे, इतना शोरगुल है संसार में कलयुग में, कहां कहां बंद करोगे बताओ, कितना देखना बंद करोगे, सब नग्न चित्र, नग्न धड़ंग, जहां टीवी में अलग, बाहर अलग, पोस्टर में अलग, दुकानों में अलग, मॉल में अलग, जहां जाओ स्त्रियों के पोस्टर आजकल रख दिए हैं, जो कमी है, कमजोरी है लोगों की, उसको जो है सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। और जितनी भी देखने की चीजें हैं पिक्चर से लेकर नाटक तक, उसमें भी यही, उसमें भी क्या है, सब कमजोरी को परोसा जा रहा है, हॉट सीन बोला जाएगा, हॉट सीन, समझ रहे नहीं, सारी कमजोरी जिससे कि बढ़िया से नरक में चले जाओ। काम क्रोध लोभ भगवान बोलते नरक के द्वार हैं, तो ये बढ़िया से संसार में परोसा जा रहा है, आओ काम, ठीक है कि नहीं। काम मतलब पिक्चरों से यही सब सिखाया जाता है, क्रोध ढिसुम ढिसुम कैसे मारना है लोगों को, कहां मारना है जैसे मर जाए एक मिनट में, और पीछे से कैसे, लोग पहले तो सामने वार करते थे, आजकल पीछे से, समझ रहे हैं। और लोभ मतलब मेरा शैंपू लगाओगे तो दो दिन में बाल काले, इतना बड़ा साबुन दिखाया जाएगा, इतना होगा इतना छोटा हो, तो ये तीनों नरक के द्वार हैं। और नरक जाने की संसार वालों की बढ़िया प्लानिंग है, साइंटिस्ट ने प्रगति की है, लेकिन कैसे बढ़िया से नरक में पहुंच जाओगे वो वाली प्रगति, समझ रहे नहीं, कैसे भगवान धाम पहुंच जाओगे उसके लिए उन्होंने प्रगति नहीं की है। तो आगे क्या बोलते हैं, धारणा, और ऐसी धारणा रख करके फिर ध्यान, फिर ध्यान केंद्रित, बताओ यहां ध्यान लगाया जाए, अब बताओ कहां ध्यान टिकेगा, साक्षात भगवान के रूप नाम गुण लीलाओं में ध्यान लगे, समझ रहे नहीं, तब कितनी जल्दी मन लग सकता है बताइए, अब ध्यान भवों में कितनी देर टिकने वाला है बताइए। और फिर समाधि स्थिति, फिर जो है समाधि लग जाती है, मतलब व्यक्ति सब उसके इंद्रियों के कार्य ठप्प हो जाते हैं और वो, लेकिन इसी विधि का पालन कर रहे थे सौभरी मुनि, कहां जाके बोल रहे थे, मैं पानी के अंदर जाके क्या करूंगा, तपस्या करूंगा, पानी के भीतर घुसे और कितने हजार साल तक तपस्या करी, लेकिन अचानक आंख खुली तो मछली का जोड़ा एक दूसरे से क्या कर रहा था, प्यार कर रहा था, तो उसको देख करके फिसल गए, मन में काम जाग गया, बाहर आए सांड की तरह बाहर निकले और सीधे राजा के पास, बोलते राजा तुम्हारा कर्तव्य है, मैं शादी करना चाहता हूं, बताओ इतने साल तक पानी के भीतर रहे, मन स्वच्छ नहीं हुआ। राजा ने, राजा की 50 कन्याएं थी, अब लोभ देखो, एक से शादी करने गए थे, 50 देखी, बोलते सबसे करूंगा मैं, सौभरी मुनि की बात भागवत में है, सबसे शादी करूंगा, तो मन बस में नहीं हो पाया। ऐसे ही वेद व्यास जी के पास में जैमिनी ऋषि आए, बोलते हैं आपने ये मन के बारे में इतनी उश्रंखल बातें, मन को बदमाश बोल दिया, उश्रंखल बोल दिया, हठीला बोल दिया, पता नहीं क्या क्या लिख रखा है, ऐसा कैसे लिख दिया। वेद व्यास जी बोले भाई मन है ही ऐसा, बोले हम नहीं मानते हैं। ठीक है नहीं मानते हैं, तो वेद व्यास जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए क्या किया, ये जो जंगल में गए, अब जंगल में गए तो वहां एक, इनको एक युवती आते हुए दिखी, बोले बचाओ बचाओ बचाओ, मेरे पीछे शेर लगा हुआ है, इनने उसको बचाया और एक झोपड़ी के अंदर बोला कि तुम यहां रहो, रात हो गई, बोले कि बेटा तुम यहां अंदर रहना और कोई भी खोले दरवाजा तो खोलना मत, मैं भी अगर रात को खोलने को अगर दरवाजा खोलूं तो मत खोलना। अब रात को इनको क्या हुआ, इनका चिंतन शुरू हो गया, खुद ही शिक्षा दिए थे, चिंतन क्या शुरू हुआ, क्या बोलते हैं, युवती का, उसी का चिंतन शुरू हो गया, अकेली है, ये है वो है, इनका काम बढ़ने लगा और ये अपना सारा ज्ञान, भगवद गीता एक साइड चली गई, भागवतम दूसरी साइड चली गई, सब सारा जो ज्ञान था उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, सब उड़ गया। क्या हुआ, अब ये जो है इनसे रहा नहीं गया और मारने लगे जोर से, खोलो खोलो, बोलते हैं मुनिवर आप ही ने तो मना किया है खोलने के लिए, मैं भी नहीं खोल सकती, ये खोलो 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 और तेजी से कहने लगे, तो युवती को समझ में आ गया मुनिवर आपकी नियत ठीक नहीं दिख रही है मुझे, अब मैं नहीं खोलूंगी। ये क्या हुए, ऊपर झोपड़ी में गए, वहां ने झोपड़ी को फाड़ा, वहां से नीचे कूदे और उसको आलिंगन लिया, आलिंगन में ऐसा किया ही कि वेद व्यास जी दाढ़ी समेत प्रकट हो गए, बोले करो आगे आलिंगन, करो करो दाढ़ी से आलिंगन, बड़ा मन बस में है तुम्हारा, है तो मैंने जो लिखा है ठीक लिखा है कि नहीं, मन बड़ा बदमाश है, बोले प्रभु बिल्कुल ठीक लिखा है आपने, तो बड़े गर्व के संग हम लोग बोलते हैं, बड़ा अपने आप को महान, इसीलिए ये सब यहां पर जो वास्तविक विधि है कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावनामृत में हरिदास ठाकुर वैश्या साक्षात गिराने आई, लेकिन हरिदास ठाकुर ने उसको भक्त बना दिया। रामानंद राय नग्न स्त्रियों को, पूरी समूची स्त्री नग्न होती थी, भगवान जगन्नाथ जी के उनको सजाते थे, वो जगन्नाथ नाटक के लिए सजाते थे रामानंद राय, और उनको तनिक भी काम भाव आ जाए। सुखदेव गोस्वामी नग्न स्त्रियों के बीच में से जा रहे थे, हमारी परंपरा ऐसी है, देखिए भक्ति की परंपरा। अर्जुन, उर्वशी ने कितना अर्जुन को प्रभावित किया, स्वर्ग में गए थे जब अर्जुन, अर्जुन नहीं माने, तो लास्ट में उर्वशी ने श्राप दे दिया अर्जुन को, तुम नपुंसक बन जाओ। अर्जुन ने बोला नपुंसक बनना मुझे मंजूर है, और बने नपुंसक वो। फिर बाद में जो ब्रहन लला के रूप में रहे कि नहीं रहे बताइए, विराट के यहां, राजा विराट के यहां उनने ब्रहन लला वो सिखाया, लेकिन मर्यादा नहीं। देखिए कितना, तो भक्त जो है उसको हायर टेस्ट मिले रहता है, वो संसारिक लोअर टेस्ट के लिए नहीं। तो ऐसे बड़े बड़े अष्टांग योगी हम लोगों ने देख रखे हैं, ऋषिकेश के जंगलों में तपस्या करते हैं, लेकिन फिर 50 साल बाद नीचे आके बोलते हैं बीड़ी का बंडल दोगे, बीड़ी फूकना है। 50 साल में भी मन बस में नहीं हुआ उनको, मुंह उनका गला सूखा जा रहा है और बीड़ी चाहिए उनको। लेकिन भक्ति योगी जो है क्या कर सकता है, इस अभ्यास में जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, इस अभ्यास से आप पूर्ण रूप से जो है अपने मन को भगवान में लगा सकते हो। बशर्ते सुबह के समय माला कंप्लीट कीजिए, हर दिन जल्दी उठिए, ध्यान पूर्वक जप कीजिए, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए, यही हमारा प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि है ये, ठीक है। इसी को बोलते हैं आदो श्रद्धा। भक्ति के जीवन में आपके पास श्रद्धा थी, साधु संघ मिला आपको, साधु संघ से क्या हुआ, आपको भजन क्रिया दी साधु ने, भजन क्रिया क्या दी, नियमों का पालन करना और जप जप करना। फिर क्या हुआ, अनर्थ निवृत्ति। फिर जब आप नियम पालन करने लगे तो आपके भीतर से गंदगी जाने लगी, अनर्थों का निवारण होने लगा, और फिर क्या होने लगा, निष्ठा जागी आपकी, भगवान में निष्ठा आई। निष्ठा के बाद क्या आया, रुचि होने लग गई, फिर भगवान के नाम, अभी रुचि नहीं है, अभी तो हम अनर्थों से लड़ रहे हैं, अभी माला कभी अच्छी हो जाती है कभी बुरी होती है, कभी मंगल आरती आ गए 4 दिन फिर गैप कर दिए, एक दिन क्लास में आ गए फिर हमको बुरा लगता है, एक क्लास सुन ले उसके बाद फिर मन करता है यार छोड़ो अब थोड़ा टीवी देख लेना चाहिए, समझ रहे हैं, अभी हमारे अभी अनर्थों से हम जूझ रहे हैं। जब रुचि आ जाए वो स्तर जो है, रुचि के स्तर में भी व्यक्ति बहुत ज्यादा सुकून और सुख महसूस, आनंद महसूस करता है, और रुचि के बाद फिर क्या होता है, बोले आसक्ति हो जाती भगवान से, अटैचमेंट, फिर तो रह ही नहीं सकते हैं, सारी दुनिया आपको बोल दे। आसक्ति के बाद भाव उत्पन्न होते हैं, भाव भगवान के लिए, और उसके बाद में फिर प्रेम, तब जाके अभी हम बोलते हैं भगवान से प्रेम हो गया, कोई कहां प्रेम हुआ, अभी प्रेम है तो नाम माला माला जपोगे, बोले माला स्वामी जी आप ही जप लेना हम माला नहीं जप पाएंगे, तो कौन सा प्रेम की बात कर रहे हो भाई, केवल लिप सर्विस, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से इस ये जो इस श्लोक में बता रखा है कि ये जो जितनी भी ये विधि है, ये विधि कारगर नहीं है, आगे बताया भी जाएगा, असली कारगर विधि है क्या बोलते हैं, हम किसी प्रकार का नशा नहीं करें, मांसाहार नहीं करें, अवैध संबंध नहीं, जुआ सट्टाबाजारी नहीं, जो खाएं उसको प्रभु को भोग लगा के खाएं, अंडम मटनम चिकनम प्याज लहसुनम नहीं चलेगा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जरूर चलेगा। प्रेम के साथ भगवान बोलते हैं मैं पत्ता पुष्प खाता हूं, उसको भी खाता हूं बोलते, अप्रहत अस्नामी प्रयतात्मनः, है कोई पूरे त्रिभुवन में कि आपका, अगर सोचिए आपका एक बहुत बड़ा जज दोस्त हो, उसको घर पे बुलाएं आप और एक पत्ता उसके आगे रख दें स्वागत में, खाइए आ गया घर फिर आपके, हो बोलेगा बदमाश नंबर एक, आज से कभी जिसकी शकल नहीं देखूंगा इसकी में, बताओ पत्ता रख दिया। भगवान एक पत्ते से, तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं, और तुलसी दल संसार में फ्री में मिलता है, सच बात है, हमारे भारत तुलसी का आंगन है, घर घर तुलसी, ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को। मजे की बात है, कुत्ते को घर के अंदर रखेंगे लेकिन तुलसी के लिए स्थान नहीं है, तुलसी बाहर, बाहर भी, और उसका कोई महत्व नहीं, फूलों को बोलते हैं डू नॉट प्लक फ्लावर्स, लेकिन तुलसी को मत तोड़ना नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसकी अहमियत ही पता नहीं है, तुलसी को फ्री में तोड़ सकते हो आप कहीं से भी, किसी के भी बगीचे में से भी, समझ रहे नहीं। तो ये हमारा भारतीय परंपरा है, तो कृपा करके जो भी पाते हैं प्रसाद पाएं हर दिन अपने घर में, चावल प्रसाद, दाल प्रसाद, मकरोनी प्रसादम, दूध प्रसादम, ठीक है कि नहीं, ऐसे करके प्रसाद पाएं और भक्तों का संग करें, इस प्रकार क्लास अटेंड करें, भगवान का दर्शन करें, आप स्नेह धीरे धीरे देखोगे कि आपका जीवन कितना कहाँ था और कितना आप आगे बढ़ गए भक्ति में, कितना आपको कृष्ण भावना, कितने कृष्ण चेतना आने लग गई है, ठीक है। फिर जो है आप भगवान के संग खेलोगे, भगवान के संग भक्त जो है क्या करता है, उनके सर पे भी चढ़ जाता है, उनके संग गेंद खेलता है, उनको पटकी पटकी में गिरा देता है, ऐसे ऐसे खेल। आपको पता है श्रीदाम और सुबल सखा कभी कभी कृष्ण से बोलते हैं कि कृष्ण जो हारेगा, मतलब पहले तो उनके यानी कि वो होती है कुश्ती होती है, और कृष्ण कुश्ती में हार जाते हैं क्योंकि श्रीदाम का मन था, और शर्त क्या थी, बोले जो हारेगा उसके पीठ पर मैं बैठूंगा, मतलब जो जीतेगा वो बैठेगा और एक स्थान तक उसको लेके जाएगा, वो वहां ले जाएगा फिर वापस लाएगा। तो कृष्ण हार गए, अब कृष्ण जो है सुबल सखा जो है कृष्ण के यहां पर चढ़ के जो है कृष्ण को ठेंगा दिखा रहे हैं, बोले अच्छा हुआ कितना बढ़िया पटकी लगाई। तो भगवान अपने भक्तों को ऐसा आनंद देते हैं और यहां पर रख करके उसको लेके जाते हैं दूर तक। तो फिर धीरे धीरे इस प्रकार से आप भगवान के क्या बोलते दास्य रस से फिर सख्य रस, वात्सल्य रस और फिर माधुर्य रस का रस आप चख सकते हैं। तो पहले इस प्रकार से हम नियमित हो जाएं, कम से कम भजन क्रिया में तो लग जाएं, ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए। यम नियम आसन भजन क्रिया है। भजन क्रिया मतलब सवेरे उठ करके स्नान करके सबसे पहले भगवान को प्रणाम करके, तुलसी को प्रणाम करके, परिक्रमा लगा के, जल चढ़ा के माला शुरू कर दें, ये भजन क्रिया है। फिर जो बनाएं उसको भोग लगा के पाएं, उससे प्रसादे सर्व दुखानाम हरिष्यसि। प्रसाद पाने से आपकी चेतना, आपका शरीर बिल्डअप होता है, जैसा खाओगे जिस प्रकार का आप अन्न खाते हो वैसा आपका चेतना धड़कती है। मुर्गा खाओगे तो फिर वैसे ही जंप करोगे, कुकड़ों को उछलोगे, और क्या है, मूड ऑफ पैशन, मूड ऑफ इग्नोरेंस। अगर सात्विक प्रसाद लोगे तो आपकी चेतना जो है कृष्ण में बड़ी जल्दी लगेगी। इसलिए सीधा बोल दिया उपदेशामृत में कि जिह्वार लालचे यही इति उति धाय, मतलब हम जिह्वा के कारण, लालच के कारण इधर उधर गिरते पड़ते, कभी यहाँ गोलगप्पा देखा, कभी वो फेंक उधर देखा, कभी यहाँ से चौमिन लाए, वो सब एकदम ऐसे लोगों के द्वारा बनाया हुआ पॉल्यूट चेतना से, वो पता चला क्या बोलते हैं क्रिकेट देख रहा है और वो चौमिन बना रहा है, और रात को आपको चौमिन खा के छक्के चौके नजर आ रहा है, बोले प्रभु जी मेरे को आज क्रिकेट कैसे याद आ गया, 8 साल से मैंने छोड़ रखा था टीवी देखना, क्योंकि चेतना जैसा उसने बनाया वो आपने पाया वही आया। वो किसी स्त्री का चिंतन कर रहा है आपको स्त्री का चिंतन हो जाएगा, क्योंकि वो बनाते हुए ऐसा चिंतन आएगा आपको। तो मस्त है जो आप पाते हो उसको कैसेट चलाते हुए भगवान का नाम गान गाते हुए बनाइए, प्रभु को भोग लगाइए, फिर पाइए। कितना आपको देखना, आपके आधे तो रोग खत्म हो जाएंगे, आरोग्यम, बड़े बड़े रोग खत्म हो जाएंगे आपको प्रसाद पाने मात्र से। सर्व दुखानाम, ये दुख क्यों है, क्योंकि नाना रोग लग चुके हैं, ये रोग वो रोग ये रोग, उसके लिए फिर डॉक्टरों के चक्कर, फिर दवाइयों का चक्कर, भगवान का चक्कर कम हो गया, ठीक है। तो साधारण नहीं है ये इतना सुनने में बड़ा आसान लगता है भोग लगा देना, जी लगा कहां रहे हैं, कितने लोग भोग लगाते हैं बताइए, आधे से ज्यादा है जो नहीं लगाते हैं, तो कैसे फिर ये अष्टांग योग होगा बताइए। यही है अष्टांग योग, कि जो आप पाएं उसको पहले ठाकुर जी को भोग लगाएं, इतने से आप देखिएगा बहुत जल्दी आपकी चेतना प्योर हो जाएगी, ठीक है। और उस शुद्ध चेतना में फिर आप जन्माष्टमी मनाने में आनंद आएगा, आपको हर चीज में आनंद आएगा। धन्यवाद, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं है तो फिर बाद में पूछ लीजिएगा, ठीक है। हरे कृष्णा।